नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। अफगानिस्तान में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। शनिवार को आए भूकंप के बाद से अफगानिस्तान में मरने वालों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है। भूकंप की तीव्रता 6.3 बताई गई है। इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर बताया जा रहा है। इससे पहले शनिवार को भी अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसमें जान माल का काफी नुकसान हुआ था। हेरात प्रांत में इससे 2000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। तालिबान का कहना है कि वहां पर आया हुआ ये भूकंप 2 दशकों का सबसे भीषण भूकंप है। अफगानिस्तान के हेरात में भूकंप से सबसे अधिक नुकसान हुआ है। शनिवार को आए भूकंप का केंद्र हेरात से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मौजूद था। भूकंप आने के बाद भले ही रेस्क्यू ऑपरेशन चला दिया गया, लेकिन बावजूद इससे काफ़ी तबाही हुई। भूकंप से कई गाँव नष्ट हो गए हैं और सैकड़ों नागरिक मलबे में फंसे हुए हैं। उन्होंने इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए तत्काल मदद मांगी है। अमेरिका ने मंगलवार को कहा कि इसराइल पर हमास के हाल ही के आतंकवादी हमले में ईरान की भूमिका के बारे में कोई विशेष सूचना नहीं मिली है, लेकिन आतंकवादी समूह की सैन्य शाखा के लिए वित्त पोषण में व्यापक तौर पर उसकी मिलीभगत है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा, हमने शुरुआत से कहा है कि ईरान की व्यापक तौर पर इस हमले में मिलीभगत है, क्योंकि उन्होंने हमास की सैन्य शाखा को भारी भरकम वित्त पोषण दिया है। उन्होंने प्रशिक्षण मुहैया कराया, उन्होंने उन्हें हमला करने की क्षमताएं मुहैया कराई, उन्होंने सहयोग दिया और वो वर्षों से हमास के साथ संपर्क में हैं। उन्होंने कहा, इन सभी चीज़ों ने उस घटना में भूमिका निभाई है जो हमने देखी है। अभी सवाल पर कि क्या ईरान को इस हमले के बारे में पहले से पता था या उसने योजना बनाने में मदद की या इस हमले का निर्देश दिया, तो अभी हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। हम इस सवाल के बारे में अपने इजरायली समकक्षों से नियमित आधार पर बात कर रहे हैं। नेपाल सरकार ने मंगलवार को कहा कि इसराइल में मौजूद सभी नेपाली छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। इससे एक दिन पहले ही नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया था कि फलस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के रॉकेट हमलों में इसराइल में नेपाल के 10 नागरिकों की मौत हो गई है तथा 4 अन्य घायल हुए हैं। हमास ने शनिवार को दक्षिणी इसराइल में हमले किए, जिसमें सैनिकों समेत कम से कम 1000 लोगों की मौत हो गई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में पुष्टि की कि इसराइल में सभी नेपाली छात्रों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। मंत्रालय की प्रवक्ता सेवा लमसल ने कहा कि हमने इजरायली सेना की सहायता से लगभग सभी छात्रों को सफलतापूर्वक सुरक्षित क्षेत्रों में पहुँचा दिया है। मेरे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार रात होने तक 50 से अधिक छात्रों को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित कर दिया गया। तालिबान ने ब्रिटेन के उन 4 लोगों को छोड़ दिया है जिन्हें अफगानिस्तान में देश के कानून तोड़ने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। ब्रिटेन सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। विदेश कार्यालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि वो ब्रिटेन के 4 नागरिकों की रिहाई का स्वागत करता है और उनके परिवारों की ओर से देश के किसी कानून का उल्लंघन करने के लिए अफगानिस्तान के वर्तमान प्रशासन से माफी मांगता है। इसमें कहा गया है, ब्रिटेन सरकार को इस प्रकरण पर खेद है। विदेश कार्यालय ने इस बारे में विवरण नहीं दिया कि वो चारों कौन हैं या उन्होंने कौन से कानून कथित तौर पर तोड़े। ब्रिटेन स्थित गैर लाभकारी संस्था प्रेसिडियम नेटवर्क के सह संस्थापक स्कॉट रिचर्ड्स ब्रिटेन के नागरिकों की रिहाई से संबंधित बातचीत में शामिल थे। उन्होंने कहा कि 4 में से एक केविन कार्नवेल हैं जो संयुक्त राष्ट्र के साथ काम कर रहे थे। रूस का संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख मानवाधिकार संस्था में दोबारा सीट हासिल करने का प्रयास मंगलवार को विफल हो गया। रूस आज महासभा में हुए चुनाव में भारी अंतर से हार गया। रूस ने जिनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद में पूर्वी यूरोपीय क्षेत्रीय समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली 2 सीट के लिए अल्बानिया और बुल्गारिया के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की। गुप्त मतदान में बुल्गारिया को 160 वोट, अल्बानिया को 123 वोट और रूस को सिर्फ 83 वोट मिले। एशिया समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए चीन, जापान, कुवैत और इंडोनेशिया को चुना गया। परिषद के नियमों के तहत भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इसकी 47 सीट क्षेत्रीय समूहों को आवंटित की जाती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर यहां आयोजित हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की 23वीं महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए मंगलवार को यहां पहुंचे। ये बैठक बुधवार को यहां होगी, जिसमें भारत क्षेत्रीय मंच के उपाध्यक्ष की भूमिका ग्रहण करेगा। हवाई अड्डे पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र राघवन ने उनकी अगवानी की। जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, कोलंबो वापस आकर खुशी हुई, मेरा स्वागत करने के लिए उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र राघवन को धन्यवाद। मंत्री ने कहा कि भारत श्रीलंका संबंध प्रगति करते रहेंगे। जयशंकर ने पिछली बार जनवरी में कोलंबो का दौरा किया था, जिस दौरान उन्होंने श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत की थी और करीबी द्विपक्षीय साझेदारी के सभी पहलुओं और इसे सभी क्षेत्रों में मजबूत करने के कदमों पर चर्चा की थी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।